تاریخ میں چلے جاتے ہیں تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھ کے بھی دیکھ لیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں تو مدینہ پاک کو وزٹ کر لیں, آپ تب بھی جوئش کی ہسٹری کو دیکھ لیں. مگر پھر جب ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, کہاں کہاں سے نکلے, اور قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ, اب میں امریکہ کا ایک فیکٹ جو آپ کے ساتھ کوٹ ان کوٹس میں شیئر کرتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ 1870 سے لے کے 1940 تک امریکہ میں ڈسکریمنیشن جوش کمیونٹی کے اگینسٹ بہت کی جاتی تھی, ان کو بار کیا جاتا تھا, یعنی ان کو رکاوٹیں تھیں ان کے بارے میں سرٹن پراپرٹیز میں رہنے کے لیے. میں کوٹ ان کوٹس, بارڈ فرام دا ریزائڈنگ سرٹن پراپرٹیز ناٹ ایکسپٹیڈ ایز اے ممبر بائی دا ایلیٹ سوشل کلبس, barred from the resort areas and limited ان ایلیٹ کالجز میں وہ اپنی رجسٹریشن نہیں کروا سکتے تھے. حالانکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر آپ نوبل پرائزز کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹل نوبل پرائزز 1901 سے لے کے 2023 تک ٹوٹل نوبل پرائزز جو دیے گئے ہیں وہ 965 دیے گئے ہیں. 965 میں سے تقریباً 214 نوبل پرائزز جو تھے وہ جوش سائنٹسٹ جو ہیں یا ریسرچرز ہیں ان کو ملے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اینٹی سیمیٹزم جو تھا پیک پہ پہنچا 1920 میں. یہ زمانہ تھا, اللہ بھلا کرے, پریزیڈنٹ لنکن کا زمانہ تھا جس میں جس کے بارے میں وہ کیا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی تھی امریکہ میں بھی. یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہتی ہوں, یہ ٹینیسی کا علاقہ تھا, امریکن سول وار میں بھی جوئش کے اگینسٹ بہت ساری کام کیے گئے تھے, ان کو ایکسپیل کر دیا تھا. ٹینیسی کا جو علاقہ ہے نا, یہ کوٹ ان کوٹس میں, اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, جنرل آرڈر نمبر 11 1862 ٹو ایکسپیل دا جوز فرام دا پراپرٹیز آف ٹینیسیز کینٹکی اینڈ مسیسیپی. دا آرڈر واز کوئکلی ریسینڈیڈ بائی دا پریزیڈنٹ لنکن. پریزیڈنٹ لنکن نے پھر مداخلت اس میں کی تھی, مگر زیادتیاں پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب پھر انہوں نے سیٹلمنٹ بنائی, تو کیونکہ ان کی پاور بہت زیادہ تھی. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ جیوش اور کرسچنز کے درمیان ایک اپنی رفت تھی, وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اگر آپ چلے جائیں, جو لوگ ریلیجن کی کمپیریٹو ریلیجنز کی سٹڈی کرتے ہیں وہ آپ کو بتا بھی سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے ان کو یہاں سے نکال کے اس طرف سیٹل کر دیا گیا تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایجپٹ کی آپ بات کر لیں, فرعون کا ذکر کر لیں, اس علاقے میں یہودی جو تھے ان کا قیام تھا, اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے. اور پھر برطانیہ نے اس میں بڑا رول پلے کیا تھا ٹو سیٹل دیم ان دیئر. آئی وش کہ یہ اکٹھے رہ سکتے پیلسٹینین کے ساتھ, مگر جو پیلسٹینین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو پراکسی وارز کہا جاتا ہے. پراکسی وارز کیا ہیں؟ کہ مغرب اپنے مفادات کے لیے بعض لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, دے آر دا موسٹ ایجوکیٹڈ اینڈ لرنڈ پیپل ود دا موسٹ ویلتھ ان دا ورلڈ, سو دے آر ریئیکٹنگ ان دیئر وے. اللہ کرے کہ ہم انسانیت کی قدر کرنا سیکھ لیں. آمین سم آمین. ٹاپ آف دا آور, اور ٹاپ آف دا آور کے بعد محترمہ شازیہ صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوگی اور ماجد جمال نیوز کو کور کریں گے. آئی کم بیک اور پھر ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پروگرام میں شامل ضرور رہیے گا. آج میں نے آپ سے جان ڈی راک فیلر کا ایک آرٹیکل شیئر کرنا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی اب جیسے چائنا کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کا ایک بینک ہو جس میں پوری دنیا کو جہاں جہاں قرضے کی ضرورت ہے وہاں قرضہ دیا جائے. اس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب آئی ایم ایف وغیرہ بنا تھا تو آئی ایم ایف وہی تھا کہ جو مقروض لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا مقروض کیا جائے, جیسے وہ پاکستان میں بھٹا سسٹم ہے. ایک خاندان جب بھٹے کے اوپر کام کرنا لگتا ہے, ان کو اپنی ضروریات کے لیے, کسی کی موت ہوگی, پیدائش ہوگی, شادی بیاہ ہو گئی, تو جو بھٹے کا مالک ہے اس سے وہ قرضہ لیتے ہیں. اس قرضے کے عوض وہ پھر کبھی اپنے بچوں کو رہن رکھواتے ہیں, کبھی آپ گرینڈ چلڈرن کو رہن رکھواتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے اپنی نسلوں کو آگے تک رہن
رکھواتے ہیں. یہاں پر اس کو انگلش میں لون شارکرز کہتے ہیں, اور یہ لوگ بھی وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے بھٹے والا چکر,
بھٹے والا. یہاں لون شارکرز کہا جاتا ہے. آئی ایم ایف از دا بگیسٹ لون شارکر. اور جان ڈی راک فیلر کا ایک آرٹیکل ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, میرے ساتھ ضرور رہیے گا. یہ اس میں ذکر ہوگا آئی ایم ایف کا, اس میں ذکر ہوگا نجکاری کا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل پرائیویٹائزیشن یا نجکاری پاکستان میں کس حد تک جاری ہے. میرے سے بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے اور آپ کی اپنی رائے ہے, آئی ریسپیکٹ یور رائے. انفارچونیٹلی چاہے وہ ہمارے جرنلسٹ ہیں چاہے وہ کوئی لوگ ہیں, ان کو بڑا برا لگتا ہے یہ بات کہنا, ایک ہی ادارے کے پیچھے لگے ہوئے, مگر آر پولیٹیشنز دے پلیڈ ایکول بیڈ پارٹ, ایکولی بیڈ پارٹ. اینڈ انفارچونیٹلی ہم وہ ماں باپ بن گئے جن کو بعض اوقات اپنا جو ہے نا اس کی غلطی نظر نہیں آتی, مگر اگر ہم نیشن نیشنل وائڈ کے اوپر نہ یہ نیشن وائڈ دیکھتے ہیں, اگر ہمیں ملک سے زیادہ پیار ہو بجائے اس کے اشخاص کے, تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کون کون غلط کرتا ہے. ہمارے پالیٹیشین کیوں وہ اپنی انڈسٹریز کو پرائیویٹائز نہیں کرتے, ہمارے پالیٹیشینس کیا وجہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں کے بیچ میں ہی اپنے ورکرز کو بھرتی کرتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ اداروں میں ان کو ان کے ورکرز کو تنخواہ ملے گی, ان کے سر کے اوپر بوجھ بھی نہیں, انہوں نے ایک اپنے ورکر کو مطمئن بھی کر دیا. Stay tuned, welcome back.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
السلام علیکم, آپ سب کو مسلم ویلفیئر کینیڈا کی جانب سے دلی عید مبارک. آپ سب لوگوں نے مسلم ویلفیئر کینیڈا کو پورے رمضان میں بہت سپورٹ کیا, اس کا بہت بہت شکریہ, اور اسی طرح سے رمضان کے بعد بھی آپ مسلم ویلفیئر سینٹر کے سروسز کو پروجیکٹ کو سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ. اور آپ لوگ کو مسلم ویلفیئر کینیڈا کی جانب سے اگین دلی عید مبارک. السلام علیکم.
770 اے ایم دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسز الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشیل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com, لوکل نمبر
6478742900. اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 کینیڈی روڈ, برامپٹن, 9058747171.
الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن تحصیل صادق آباد ڈسٹرکٹ رحیم یار خان پاکستان میں سالوں سے یتیم اور نادار بچیوں کی اجتماعی شادی پر کام کر رہے ہیں. اس سال 2024 میں 300 بچیوں کی اجتماعی شادی پروگرام کے لیے آپ سے بھرپور تعاون کی اپیل کرتے ہیں. آپ کی دی ہوئی زکات اجتماعی شادی پروگرام میں استعمال ہوگی. فار فردر انفارمیشن وزٹ AWFCA.ca.
In the heart of Pakistan, where half of the population are too poor to afford health care, they are calling out to Allah. They are calling for someone to heal them.
From primary care to cancer treatment, Indus Hospital will treat millions on your behalf.
Indus Hospital and Health Network provides all of these services free of charge.
Don't delay this Ramzan. Give from what he has given you.
Donate today at indushospital.ca or call us at 289-667-3135.
لو جی, جارج براؤن کالج دا اوپن ہاؤس آ گیا ہے ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن دے تین کیمپساں چ. ہفتہ 13 اپریل سویرے 10 بجے تو لے کے دوپہرے 2 بجے تک 250 پروگراماں وچ ہر کسی لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. تسی 13 اپریل نو کالج دا پھیرا تے لاؤ تے ساڈے سٹاف نال مل کر ساری جانکاری لو تے رجسٹر کرو آج جی georgebrown.ca تے.
ویکھو جی, آ گیا پھر اوہی سونا ویلا ساڈے پلانٹ ارتھ نو منان دا ویلا. سٹی آف برامپٹن اپریل دے مہینے نو ارتھ منتھ دے طور تے منا رہا ہے. آ جاؤ جی تے فری فیملی فرینڈلی پروگرام دا چوکھا سواد لو تے ثابت کرو برامپٹن ایک گرین سٹی ہے. ارتھ ڈے انوائرمنٹل سیلیبریشن 2024 اینڈ گو گرین ایوارڈز دی تقریب گولڈ میڈوز کمیونٹی اینڈ لائبریری وچ ہفتہ 20 اپریل نو سویرے 11 بجے تو لے کر 10 بجے تک 10150 دی گولڈ روڈ برامپٹن. ہور جانکاری لئی سمپرک کرو brampton.ca/earthmonth.
کیا آپ کے گھر اور آٹو انشورنس کی رینول ہو رہی ہے؟ کیا آپ درست انشورنس کوریج کے لیے اچھی قیمت کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آپ کو آل اسٹے ایجک ایجنسی کے راجہ مدثر کو 6472903773 پر کال کرنی چاہیے. آج ہی کال کریں اور آپ دو کاروں اور ایک گھر کی انشورنس کراتے وقت تقریباً $1,775 کی بچت کر سکتے ہیں. راجہ مدثر, 6472903773, آل اسٹیٹ کے ساتھ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی.
ट्रक वर्ल्ड कैनेडा विच ट्रकिंग इंडस्ट्री का सब तो वड्डा शो इंटरनेशनल सेंटर विखे 18-19 अप्रैल हो रहा है जिथे ट्रकिंग इंडस्ट्री से संबंधित बहुत सारे वेंडर्स मौजूद होंगे। मिलो क्विक ट्रक लीव की पूरी टीम बूथ नंबर 1410 विच जिथे ऑयल ते फिल्टर कंपनियां दे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। जिन्ने दिन जितो फ्री ऑयल चेंज ते कई होर इनाम। फ्री एंट्री पास ले truckworld.ca ते प्रोमो कोड क्विक दी वरतों करो। वधेरे जानकारी ले कॉल करो क्विक ट्रक क्यूब 519-622-0660।
ग्रिल इन द हार्ट मिसेस सागा में ऑर्डर वाया फोन। इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। ग्रिल इन द हार्ट।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 पाथरा रोड मिसिसागा।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसे कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 4163022522 302-2522।
भाई, खवातीन को तो जेवरात बहुत अच्छे लगते हैं। चूड़ियाँ ले लो, कड़े ले लो, चेन्स ले लो, स्टोन ज्वेलरी, रूबी ज्वेलर्स का नाम याद रखना। शादी ब्याह है या आम कोई छोटा बर्थडे पार्टी अप या किसी को गिफ्ट देने के लिए, यू मस्ट विजिट रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड का ट्रेड है या फिर रिपेयर है, रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड, 9056776888। अक्रम भाई या अस्लम भाई से बात कीजिएगा।
मिसिसागा और इसके आसपास रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी, ताज़ा सब्जियां, फल, मसाले, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड गोश्त और किचन की जरूरत का सब सामान, वो भी डिस्काउंट सेल प्राइस में। ओपन 7 डेज अ वीक, सुबह 10 से लेकर रात 9 बजे तक। विजिट करें मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी, 1010 ड्रीम क्रेसेंट, यूनिट 12 इन मिसिसागा, 9052861998। मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी।
Fair & McKay Menswear, three elements that represents the brand, fit, quality and value, quality comparable to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss.
New clearance and outlet launched, 100% Italian wool suits from $249.99, 100% Egyptian cotton shirts from $29.99, 100% Italian wool trouser from $49.99, light winter jacket $79.99, wool cashmere winter coats $299.99.
1535 Lakeside Drive, Unit 19 and 20 in Mississauga, 905-670-3388. SpareAndMcKay.com.
अकाल ट्रक एंड लूम,
ताड़े ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस, रिपेयर, ऑयल चेंज, वॉश ते मेंटेनेंस। एक और खुशखबरी, नॉर्थ अमेरिकन, चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर विद फुल वारंटी।
अकाल ट्रक एंड लूम, 1776 Mearside Drive, 905-565-1100.
जी सारे नाजरी वेलकम बैक अगेन एंड 5:14:45 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और सब अब टाइम की परवाह नहीं है हमें, टाइम बहुत है, बड़ा टाइम है, टाइम ही टाइम है जी। हाँ जी, अब चलेंगे हम आपको लेके न्यूज की जानेब। न्यूज सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन दिया है किसने, ओपन माइक कैफे ने। ओपन माइक कैफे आपको मिलता है 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसागा में। ये डंडास एंड आपका लभला करे डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर आपको मिलेगा। पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हो और आज ईद का दूसरा दिन है और कल ये तीन दिन जो है यहां पर अभी भी जो इनका बफे है वो जारी है साहब। 30 आइटम्स फॉर $30 ओपन माइक कैफे। अभी से थोड़ी देर बाद हम आपकी बातचीत भी करवाएंगे जनाब नासिर शाह साहब से। 30 आइटम्स फॉर $30 ओपन माइक कैफे। डेंटिस्ट्री और मिसेस सागा की बात कर चलो। डेंटिस्ट्री और मिसेस सागा फैमिली ब्रेसिस कॉस्मेटिक इम्पैक्ट इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम बिकॉज दो लोकेशन से सर्व करते हैं, दोनों ब्रैम्पटन के इलाके में हैं आपके। डॉक्टर नाजिया रहमान की बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर नाजिया रहमान हमारी और आपकी डेंटिस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर, मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं आपको। डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शन इनके पास हैं। डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100 इनका फोन नंबर है। सब सेल अभी भी लगी हुई है एंड मैं बात कर रहा हूं बटाला सुपरमार्केट की। बटाला सुपरमार्केट पे पहुंच जाइए आप, चाहे आपने मीट के ऑप्शंस लेने हो मींस मीट या चिकन वगैरह उस पर भी सेल है और इसके अलावा सारी ग्रोसरी हर किस्म की ग्रोसरी पे एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हैं। आपने जाना होगा 200 मार्कम एंड एग्डेंटन के कॉर्नर पर इन स्कारबेरिया 4162643111 बटाला सुपरमार्केट का फोन नंबर है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे और आपके अपने जनाब हेयर मैक्स के शिराज रहीम का कहना है कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, एक टोरंटो के इलाके में और एक मिसागा के इलाके में। अगर आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी आ गई हो, सुनने में कमी आ रही हो तो साहब आप एक दफा जनाब शिराज साहब पर तशरीफ लाइए, साजो आवाज का हवाला देंगे तो आपका जो हेयरिंग टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। हेयर मैक्स के शिराज का फोन नंबर है 4167928792। बड़ा इजी नंबर है और पहुंचाइए साहब इनके पास एंड दे हिल टेक केयर ऑफ यू। टेकिंग केयर की बात हो रही है तो साहब अगर आपके और भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं ले आता हूं आपको शाजिया मलिक के पास, वो आपके सारे प्रॉब्लम जैसे डेंटिस्ट के पास है, डेंटिस्ट के पास आपको जाना है, दर्द हो रहा है दांत पे, दांत निकलवाना है, इनके पास आइए, एक ही वक्त में आपका सारा दर्द दूर और फ्री कर इलाज करती हैं। ये एक बात है इनमें, फ्री इलाज करती हैं, बस एक वक्त में आपका दांत ना रही दर्द। शाजिया मलिक जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, यानी मजद भाई आपकी जरूरत को सलाम है, मड़ी सी आप जान है फिर भी मेरे साथ पंगे, फिर मेरे साथ पंगे,
ये आपकी तारीफ में कहा
ये तारीफें? हाँ। तो मैंने खाली हाथ रख दिया ना आप जैसे बंदे के ऊपर या आमिर के ऊपर, सांस निकल जानी है आप दोनों।
मैंने आपसे कहा ये तो आपकी तारीफें हैं।
अच्छा हाँ, ये तारीफें हैं,
हमने पाला आपको इसलिए यहाँ पर 770 पे हमने पाला इसलिए आपको।
अच्छा अच्छा,
कि लोगों की जाने निकाल दी है,
डराने के लिए, लोगों को डराने के लिए रखा हुआ। अच्छा अच्छा, तो आपकी तरह के मासूम कुछ कराची के बैठे हुए थे ना शादीशुदा,
आप सही से काम करें वरना लोग ना बचपन में लोग अपने माए जो थी वो
बच्चों को डराती थी कि शादी आ जाएगी,
नहीं वो तो पुरानी बातों में गब्बर सिंह आ रहा है जी, गब्बर सिंह आ रहा है बच्चे सो जाते थे, आजकल बड़ों के लिए ये है देख सीधा हो जा काम सही किया करो वरना वो शादी आ रही है।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरह के मासूम कुछ बैठे हुए थे ना करांची के शादीशुदा हैं तो वो बैठे उनके साथ साढ़ा एक मतलब बड़बोला पंजाबी भी बैठे हुए ऐसी, तो वो कह रहा था ओ यार देखो पाकिस्तान कितना पीछे रह गया है यार, इंडिया कितना अगे निकल गया है, सारे उन्होंने बंदे कोई इधर कोई उधर, कोई गूगल का हेड कोई ये थे वो बने हुए हैं, तो वो जो करांची के मासूम थे अब वो डर तो रहे थे उस पंजाबी से, लेकिन उन्होंने जरूरत करके उन्होंने कहा नहीं नहीं एक पाकिस्तानी ने अभी एक सेकंड पहले गूगल को ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा अच्छा कहता है ओ रियली कहता हाँ यार उसने एक जीमेल बनाया अकाउंट अब देख लें मासूमियत के किस लेवल पे
देख
आप लोग
देख लें आप ये देख लें कि आप इस पे हंसने वाली चीज नहीं है अफसोस का मकाम है
लेकिन मैं कह रही हूँ आपके करंची के जो बच्चे हैं कितने मासूम हैं मजद भाई आप देखें है ना बहुत ही मासूम है खास तौर पे जो आपकी तरह के जिनकी शादी को पता नहीं कोई 50,000 साल हो गए अच्छा जी आपको पता ही है हमेशा मजद भाई जो है वो मुझे काम नहीं करने देते लेकिन हम इधर काम करने आए हैं ये जो है ना आमिर के साथ सारा दिन फिरते रहते हैं
कभी कभी हम काम करने के लिए आए हैं कभी कभी
हाँ कभी कभी जी मजद भाई जो है ना वो हम वर्क हार्ड करते हैं और मजद भाई वर्क हार्डली करते हैं
हार्डली वर्क
नहीं वर्क हार्डली ठीक है हम वर्क हार्ड और आप वर्क हार्डली
ठीक है हो गया
अच्छा जी दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय रियल कैनेडियन सुपर स्टोर और इनकी सेल जो है कल तक चल रही है तो आप जो है अभी भी जा सकते हैं और कुछ जो उनके डिस्काउंट्स लगे हुए हैं उनसे आप फायदा उठा लें। इन्होंने अपनी सेल जो थी वो शुरू की थी रमदान के लिए लेकिन रमदान के कुछ गुडीज जो हैं वो अभी भी ये ऑफर कर रहे हैं और एक और दिन रह गया तो अगर आपको कुछ डिस्काउंटेड चीजें लेनी है तो आप जा सकते हैं रियल कैनेडियन सुपर स्टोर पे और आपको बहुत सारी अच्छे डील्स मिलेंगे। इसके अलावा जनाब राजा दे बादशाह अगर आपको राइट कवरेज चाहिए तो आप इनको कॉल कर लें एजेक्स एजेंसी में होते हैं ये और इनका नंबर है 6472903773 एंड जनाब मलिक लॉ ऑफिस कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं यानी कि जैसे माजद भाई कहते हैं मैंने कोई मुका शुका आपको मारा है तो आपने कोई केस करना है इसी तरह के किसी बंदे पे तो जो है आप मलिक लॉ ऑफिस जा सकते हैं और इधर होते हैं मोहम्मद अतीक मलिक साहब इनका नंबर है 9052614455 बहुत ही जबरदस्त आपको लीगल एडवाइस देते हैं तो राइट लीगल एडवाइस के लिए आप मलिक साहब के पास जा सकते हैं। ठीक है जी ओके जनाब अच्छा जी होना चाहिए अपनी यहां खरबा शुरू करने हैं माजद भाई जो ये AI आता जा रहा है ना हर चीज में ये डेडली होता जा रहा है बहुत ही खतरे में नाक होता जा रहा है। ठीक है जी अच्छा जी अब जो है एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कि वो कह रहे हैं जी कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसने कोई तकरीबन 300 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ये AI यूज किया था। अच्छा अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं जोएना रेडन है एसोसिएट एडिटर प्रोफेसर एट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी वो कहते हैं जी ये बिल C-27 जो लेकर आ रहे हैं और इसको जो ये लेजिस्लेशन बनाना चाहते हैं जिसमें कि वो कहते हैं जी कि अब हम जो पब्लिक सर्विस है उसके अंदर हम देने के लिए लोगों को AI यूज करेंगे तो ये बिल जो है ये सही तरह से डिफाइंड नहीं है ये टेबल तो करने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर और जो कोई मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रही हूं लेकिन इनको पब्लिक स्क्रूटनी पे डालना पड़ेगा इसको अपना ये जो बिल है पब्लिक को देखना पड़ेगा कि भई ये AI है ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ऐसा ना हो कि हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी सारी ले लेके
जाना है वो तो 100% जाना है उसके बगैर तो आपका होगा नहीं
होगा ही नहीं
पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी जाएगी उसके अंदर क्योंकि AI जो है इस लाइक
कंप्यूटर
है ना तो आप वो कंप्यूटराइज्ड है वो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है तो उसके लिहाज से वो आपको जवाब देता है
देगा तो वो कहते हैं जी कि ये इसको पब्लिक स्क्रूटनी पे पहले डालने की जरूरत है इसके ऊपर एक पब्लिक डिबेट होनी चाहिए और ये बिल्कुल ठीक नहीं है लोगों की प्राइवेसी जो है उसके ऊपर लेकिन ऑलरेडी कनेडियन गवर्नमेंट यानी उनका कहने का मतलब था कि बगैर पूछे बगैर पब्लिक की नॉलेज के वो AI यूज कर रहे हैं खासतौर पर जैसे कि नेशनल डिफेंस है उसके अंदर ये लोग रिड्यूस कर रहे हैं और नेशनल डिफेंस वालों ने ये कहा था जी कि हमने AI इसलिए यूज किया था कि हमको बहुत सारे कंप्लेंट्स मिले थे कि हायरिंग के अंदर बहुत सारा बायस दिखाया जाता है तो उस बायस को कट करने के लिए या ये फिगर आउट करने के लिए कि ये बायस वो कौन दिखा रहा है तो उसको देखने के लिए तो अब बात वही है कि जो साइंटिफिक इन्वेंशन होती है उसको यूज आपने कैसे करना है वो बड़ी समझदारी से यूज करने की जरूरत है क्योंकि देखें ना जैसे अब वो आपको याद है कि जिस वक्त VCR और वो कैसेट्स आई थी वीडियो कैसेट्स आई थी तो कोई लोग तो उसके ऊपर जो है वो खराब किस्म का मटेरियल देख रहे थे और कुछ लोग जो हैं उसके ऊपर मैसेज जैसी मूवीज भी देख रहे थे और भी कुछ देख रहे थे तो अब ये टेक्नोलॉजी का जो यूज है ना ये इसमें बड़ी फाइन लाइन है कि आप उसको यूज कैसे करना चाहते हैं लेकिन इनका प्रोफेसर साहिबा का कहना है कि इसको आपने कहीं पे भी यूज करना है अपने गवर्नमेंट के ऑफिस में पब्लिक स्क्रूटनी इंपॉर्टेंट है उनको बताना आपको पड़ेगा कि जिस वक्त हम ये अपने इन अदारों के अंदर ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा सकती है, तो फिर उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या ब्लॉक करना चाहेंगे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको उठा सकता है कि नहीं उठा सकता।
क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन इज वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, इट इज पब्लिक
पब्लिक। हाँ जी, हाँ जी,
अब मैं उसको उसकी वजह बताऊं आपको कि आप जो आपका ड्राइवर्स लाइसेंस है या आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जहां पर भी चिप लगे हुई है ना, तो वो चिप जो है वो दैट हैज ऑल द इन्फॉर्मेशन आपकी जो है उसके अंदर ऑलरेडी है। तो अभी तो कोई यूज नहीं कर रहा उसको, मगर टेक्नोलॉजी लाइक AI, वंस यू पुट योर इन्फॉर्मेशन इन देयर,
एक सेकंड में वो आपका, जैसे को कहते हैं ना कच्चा चट्टा, वो सारा कच्चा चट्टा खोल देगा गवर्नमेंट के सामने।
एग्जैक्टली
कि आप कौन हैं, किधर हैं, कहां से आए हैं, आपकी ट्वीट्स क्या आती हैं, आप राइट विंग हैं, लेफ्ट विंग हैं,
इसके अलावा वंस द इन्फॉर्मेशन इज पुट इन देयर, उसमें ये भी टेक्नोलॉजी है कि दे कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली हु यू आर और वेयर यू आर।
जी 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 जी, अभी भी आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उससे लोग आपको ट्रैक कर लेते हैं, इजी वैसे। तो ये है, तो ये आज इसके ऊपर जो है बड़ी डिस्कशन हुई है। अच्छा जनाब, दूसरी जो है, आज टूडो साहब जो थे वो जो ये फॉरेन इंटरफेरेंस की जो इंक्वायरी कमीशन बैठी हुई है उसके सामने आज हाजिर हुए हुए थे और उस पर उनसे पूछा जा रहा था कि टूडो साहब आप इस पर बताएं, तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसीलिए जो है ये जो किलिंग हुई थी हरदीप सिंह निजर की, जिसमें कि इन्होंने अलेजली कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के कुछ जो हैं ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, हमने इमीडिएटली उसको बताया था, इनको मारा गया था, निजर साहब को आपको पता ही है आउटसाइड अ गुरुद्वारा इन सरी ऑन जून 18 लास्ट ईयर, और उसी की वजह से इंडिया और जो कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो भी खराब हैं। ट्रूडो साहब ने एलिगेशन लगाए थे सितंबर में कि आपके लोग जो इन्वॉल्व हैं, इंडिया को जो बताया था, और मोदी जी के साथ भी इनकी जो डिस्कशन हुई थी तो उन्होंने कहा था जी कि यह, तो उसके ऊपर आज ये बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा जी कि ये जब भी कभी हमारी सॉइल के ऊपर कोई एक्टिविटी करता है हम फौरन उसको बताते हैं और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। इसके अलावा आज उन्होंने बड़े डिटेल में टूडो साहब ने बताया कि हमारा जो है नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइजर जो है उसका क्या रोल है, वो मुझे क्या बताता है, हम उस पर फिर कैसा एक्ट करते हैं, चाइनीज इन्फ्लुएंस क्या है, चाइनीज कनेडियंस जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पोल्स को, उसका हमने मेजर्स क्या जो है इन प्लेस रखे हुए हैं और मुझे क्या बताया जाता है और ये जो सारा कुछ होता है वो कैसे चलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि लेकिन जो कनेडियन होएगा उसके राइट्स हैं टू बी फ्री फ्रॉम एक्सट्रॉशन कोर्जन इंटरफेरेंस, जैसे ही वो अपना वो कंट्री ऑफ ऑरिजिन जो है वो छोड़ देता है, और हमारी जो लिबरल गवर्नमेंट है हमेशा कनेडियंस के राइट्स और फ्रीडम्स के लिए जो है खड़ी रहेगी और उसको डिफेंड करेगी। तो ये आज बड़ी लंबी बातचीत हुई है, उनसे पूछा जा रहा था बेसिकली कि ये जो इंटरफेरेंस की बातें आ रही हैं चाइना पाकिस्तान और इंडिया के बारे में 2019-2021 के इलेक्शन के सिलसिले में, उस सिलसिले में आपका क्या कहना है, तो उस सिलसिले में ये एक एक्सटेंडेड जो है एक रिप्लाई दे रहे थे ट्रूडो साहब इस सारी चीज के बारे में। इसके अलावा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी क्रिस्टिया फ्रीलैंड और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो कह रही हैं जी कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो अब अलाउ करेगा 30 ईयर का एमोर्टाइजेशन पीरियड ऑन इंश्योर्ड मॉर्गेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स, जो कि अपना जो है नया घर खरीदने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसमें यह आज इन्होंने अनाउंसमेंट क्यों किया है, उसमें इन्होंने अनाउंसमेंट यह किया है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो इनको कह रहे थे कि भई आप ये जो आपका बजट भी अभी आने वाला है अप्रैल 16 को, तो आप उसके अंदर क्या ये करेंगे कि ये जो आप पीरियड है एमोर्टाइजेशन का इसको आप बढ़ाएंगे, उसी सिलसिले की ये बात कर रही थी। लाइक जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बजट आने वाला है अप्रैल 16 से, तो उस पे जो है ये सारी बातचीत चल रही थी। इन्होंने कहा जी हमने एक होम बिल्डर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने हमको कहा था कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा जो है वो कम होती जा रही है, तो अगर आप उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन को भी होम कंस्ट्रक्शन को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। इस सिलसिले में फिर उन्होंने फ्रीलैंड साहिबा ने कहा कि गवर्नमेंट जो है नियरली डबल करेगी इसको, ये जो $60,000 का अमाउंट है फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ताकि वो अपने जो RRSP है उससे पैसे ड्रॉ कर सकें और अपने घर जो है उसको जो है वो खर्च कर सके। अच्छा, इससे पहले जो थे आप सिर्फ $35,000 दे सकते थे, अब इन्होंने कहा जी कि आप $60,000 तक जो है वो ले सकते हैं। तो वो ये कह रही हैं और वो कह रही हैं जी कि ये जो हमारा अब जो फेडरल बजट आएगा उसके अंदर और भी ज्यादा डिटेल्स आएंगी, ये पैसे वो लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो कि जिन्होंने के घर लिए थे बिटवीन जनवरी 1, 2022 और फिर दिसंबर 31st 2025 तक जो है वो कर सकते हैं। तो यानी पहले जो था 2 ईयर्स का पीरियड होता था कि आप उसमें जो है ये अगर अप्लाई करना चाहते थे या ले सकते थे, अब उन्होंने कहा जी कि 5 साल हमने इसको बढ़ा दिया है, 5 साल तक का।
अगर जब शर्वे जी आप ये चीज नोट कर लें कि अगर पहले अमोर्टाइजेशन उन्होंने 25 ईयर्स का रखा था,
हाँ
है ना, 25 ईयर्स का, अब जो है उसको उन्होंने कहा कि चले आप 25 ईयर्स में, क्योंकि मंथली पेमेंट आपकी बहुत ज्यादा आ रही है,
हाई हो गई है,
तो ये लेट्स डू इट फॉर 30 ईयर्स। ये कोई एक फेवर
नहीं है,
लोगों
सोल्यूशन नहीं है,
इट इज नॉट अ सोल्यूशन।
सोल्यूशन
इसलिए नहीं है कि अगर आप 30 ईयर्स का अमोर्टाइजेशन लेते हैं तो आपको ये जो मंथली पेमेंट दे रहे हैं आप उसमें इंटरेस्ट और ज्यादा पे कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग प्रिंसिपल। जो घर पे ऑफ करने का जिसको शौक है वो क्या करे कि भाई आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट लॉन्गर अमोर्टाइजेशन पीरियड आप उसको कम करते रहे। जैसे अगर मैंने आज फर्ज किया मैं नया घर खरीदा है और 25 साल की मैंने वो अमोर्टाइजेशन ले ली है, 5 साल बाद जब मेरा रिन्यूअल आएगा तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू 25 ईयर्स या 30 ईयर्स आई नीड टू डू इट 20 ईयर्स। पहले 25 ईयर्स था तो 5 साल तो पैसा पे कर दिया मैंने, तो अब उसको 20 ईयर्स करें, फिर 20 ईयर्स के बाद 15 ईयर्स करें, फिर 10 ईयर्स करें। दैट्स द ओनली वे यू कैन पे ऑफ योर मॉर्गेज।
वो पैसा जो है वो प्रिंसिपल में जाता जाए ना, तो मॉर्गेज उसकी जो है
exactly.
जो टैक्स
तो अगर आप उसको अभी करें कि भाई आपने 22 में भी खरीदा है घर, तो आपके मंथली पेमेंट ज्यादा है, तो हम आपको चले 30 ईयर्स में दे देते हैं, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन फॉर इट। सोल्यूशन ये है कि आप इंटरेस्ट रेट को कम करें ताकि आपका जो
प्रिंसिपल
है उसमें से भी कुछ पैसा कम होता जाए, ताकि आप उसको जल्दी से पे ऑफ करें। अब आप अगले 5 साल या 10 साल में जितने लोगों ने घर खरीदे हैं वो जाके 40 साल में जाके घर को पे ऑफ,
प्रिंसिपल तो उधर का उधर ही खड़ा हुआ है,
उधर का उधर ही
खड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल सही, ऐसे ही। अच्छा जी, अच्छा जनाब, एनडीपी जो है आपको पता ही है उसने बड़ी बैक दी हुई है लिबरल गवर्नमेंट को, लेकिन आज जो एक मुद्दा उठा है उसके ऊपर एनडीपी जो है वो कंजर्वेटिव के साथ खड़ी नजर आई। उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि ये जो कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा था कि भाई आप कार्बन प्राइसिंग जो है उसको इंक्रीज ना करें। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि एक इमरजेंसी टीवी मीटिंग जो होती है या एक टीवी की डिबेट जो है वो होनी चाहिए, और एनडीपी ने कहा कि इट शुड नॉट बी ऑल एंड ऑल यू नो टॉक ऑन क्लाइमेट पॉलिसी, कि आपको ओपन होना चाहिए कि आप प्रीमियर्स को सुने। अच्छा जी, अब ये बिला वजह इसको खींचते जा रहे हैं और आज एनडीपी भी इनके साथ शामिल हो गई है। ट्रूडो साहब ने कोई एक दफा नहीं 10 दफा प्रीमियर्स जो हैं उनको कहा है कि भाई आप अल्टरनेटिव बताएं, किसी प्रीमियर ने जो है उसको अल्टरनेटिव नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि एनडीपी जो है ना उसको भी चीजें जब भूलती जा रही है। तो एनडीपी ने आज एग्जैक्टली वही बात की, उन्होंने कहा जी एक मीटिंग टीवी की बिठाएं और सारे जो हैं उसके अंदर बैठे होने चाहिए प्रोविंशियल और टेरिटोरियल लीडर्स, और 5 वीक्स के अंदर अंदर ये टॉक शुरू होनी चाहिए और उसमें जो है इनका अल्टरनेटिव आप सुने। और भाई प्राइम मिनिस्टर तो 10 दफा कह चुका है कि भाई आप अल्टरनेटिव हमें बता दें, तो किसी ने अल्टरनेटिव बताया नहीं है। अच्छा जी, आज एनडीपी कह रहा है नहीं नहीं हम जो है वो हम कंजर्वेटिव का साथ दे रहे हैं और आप जो है ये इनके साथ बैठे हैं प्रोविंशियल लीडर्स और टेरिटोरियल लीडर्स के साथ और ये एक जो है वो लेकर आए। अच्छा, अब ये जो है कह रहे हैं जी कि हम आपको सपोर्ट भी करेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, और एनडीपी और ब्लॉक की बैकवा दोनों ही बल्कि कह रहे हैं कंजर्वेटिव को कि हम इसके ऊपर करेंगे। लिबरल जो एमपीज हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी ये कार्बन प्राइसिंग कोई ज्यादा लोगों पे इफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए कि लोगों को कार्बन प्राइस का रिबेट अब जो है आना शुरू हो जाएगा, तो इनफैक्ट उनके पास ज्यादा पैसे होंगे स्पेंड करने के लिए। तो बहरहाल जी ये चीज जो है बस अब इसको खींचना इनका मकसद है, तो अब ये खींचते चले।
मगर ये एनडीपी वाले इन द एंड आई डोंट थिंक दे गोइंग टू सपोर्ट दिस बिल।
लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ट्रूडो साहब ऐसा करें। तकरीबन 700 के करीब जो टीडीसी के वर्कर्स हैं उन्होंने आप कहा है जी कि हम स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं 2 वीक्स जो है कहते हैं जी कि हम इन लेस देन 2 वीक्स हम जाएंगे, क्योंकि जो क्यूब लोकल 2 है वो कहती है जी कि कॉन्स्टेंटली टीडीसी मैनेजमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं और बात उनसे कर रहे हैं, लेकिन ये बात जो है ये आगे बढ़ नहीं रही है, और अगर ये बात आगे ना बढ़ी तो फिर हम हमारे जो 661 इलेक्ट्रिक ट्रेड एंड जो दूसरे वर्कर्स हैं टीटीसी के ऊपर वो 12 एएम से ऑन अप्रैल 22 जो है वो जाएंगे, उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि हमारी टॉक्स जो है मार्च 2022 से शुरू हुई हुई है और हमने जब अब लोगों से पूछा कि भाई ये टॉक्स किसी तरफ जा रही नहीं रही है, तो 99.3% ने फेवर किया है कि हमें स्ट्राइक पे जाना चाहिए। इसमें मेन स्टिकिंग पॉइंट जो है वही है, वेजेस है कि भाई अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन हमारी वेजेस जो है उनको बढ़ाना चाहिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। लेकिन टीडीसी ने अपनी जगह पे कहा जी कि हमारे पास एक जो कंटिजेंसी प्लान होता है वो इन प्लेस है और ज्यादा तो इफेक्ट नहीं होगा टीडीसी के जो चलते हैं,
बिकॉज दे आर ओनली लेस देन 700
पीपल,
बट दे आर वेरी वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट वर्कर्स, वो सिग्नल वगैरह जितने भी आपको नजर आते हैं
खासतौर पर इलेक्ट्रीशियन,
बाकी के सारे का सारा उन्हीं के हाथ पे होता है। तो ये मगर
वो कहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा फिर भी।
दो साल से उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
नहीं है कॉन्ट्रैक्ट,
है ना, दो साल से बगैर कॉन्ट्रैक्ट के वो काम कर रहे हैं। तो अब अगर उन्हें कोशिश भी की स्ट्राइक करने की तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू पुट द बायलॉ देयर कि भाई आप यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि वो इसेंशियल में आ जाता है।
बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जनाब, आज सीआईबीसी का एक पोल आया है और सीआईबीसी के इस पोल के मुताबिक 76% कैनेडियंस जो है वो कहते हैं जी कि हम तो घर बिल्कुल खरीद सकते नहीं है। उसकी वजह ये है कि हाउसिंग मार्केट जो है हमारी पहुंच से बाहर होती चली जा रही है। ये एक ऑनलाइन सर्वे इन्होंने किया था फरवरी के महीने में, जिसमें कि 70% लोगों ने कहा था कि जी मार्केट जो है ओवर प्राइस्ड है और ये जो है मेन बैरियर है असल में। 63% ने कहा जी कि हम तो सेव ही नहीं कर सकते पैसे डाउन पेमेंट के लिए। 55% ने कहा कि नया घर जो है हम उसी सूरत में अफोर्ड कर सकेंगे जब हमें इनहेरिटेंस में या फैमिली का जो गिफ्ट है वो हमें मिलेगा। इवन उन्होंने कहा जी कि करंट होम ओनर्स जो है वो भी बड़े परेशान है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स जो है क्या हमारे लिए आने वाले दिनों में ये पे करना ईजी होगा कि नहीं। 51% वेरिएबल रेट मॉर्गेज होल्डर्स जो थे उन्होंने कहा जी कि बहुत सारी एवरीडे एक्सपेंसेज है जिनको हम कट कर रहे हैं। 21% जो है उन्होंने कहा जी कि हम लम सम पेमेंट्स अब करते हैं इसकी मॉर्गेजेस की, अदरवाइज ये बड़ी मुश्किल हो गई है। 45% ने कहा जो फिक्स्ड रेट मॉर्गेजेस वाले थे कि हमको भी अपने आप कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस काटने पड़ेंगे ताकि हम अपनी आराम से दे सकें मॉर्गेजेस दे सकें एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स, क्योंकि हर दो साल में ये रिन्यू होती जाती है। कुछ लोग तो चार साल की भी लेते हैं, कुछ पांच साल की भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर दो साल की। तो वो कहते हैं जी कि हम भी कर रहे हैं। तो मतलब जो मार्केट है वो काफी अभी भी अनसर्टन है, लोग खुश नहीं है, पैसे नहीं है, तो घर जो है वो कहते हैं आने वाले दिनों में घर की खरीदारियों में थोड़ी तेजी आएगी, अब कैसे आएगी देखेंगे। बोइंग जो है जी उसके ऊपर आज एक मेजर 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 जो है एक आई है, एक विसल ब्लोअर है सैम सैलेपोर, वो कहते हैं जी कि मैं काम करता था बोइंग में और मैंने इनको बताया था बोइंग वालों को कि इंतहाई पुअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तुम लोग फॉलो कर रहे हो, खास तौर पे अपना 787 ड्रीम लाइनर और 777 जेट्स के ऊपर, और ये इसकी इंजीनियरिंग फ्लॉज हैं, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के ऊपर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ये अब जब इससे बात लाई है तो यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कहा जी कि इसके ऊपर तो फिर अब जो है एक प्रोब बिठानी बनती है। ये जो है सैम साहब, इन्होंने कहा जी कि मैं एज इंजीनियर बोइंग के ऊपर काम करता था और बोइंग जो थी वो उनके पास ऑर्डर्स बहुत सारे आ गए थे, तो उनको फटाफट पूरा करने के लिए खास तौर पे ये जो प्रोडक्शन कर रहे थे 787 ड्रीम लाइनर की, उसके ऊपर ये सेफ्टी के जो प्रॉब्लम्स थे उनको नहीं कर रहे थे और फटाफट बेचने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह जो है इसके अंदर इन्होंने जो है और भी बहुत सारे जो मिस अलाइंड पार्ट्स जो थे वो लगाने शुरू कर दिए थे और वो जो थे वो प्रॉपरली बैठ नहीं रहे थे, दे वर नॉट फिटिंग टुगेदर प्रॉपरली। अब इनके जो लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं जी कि हमने ये जो हमारा जो ये क्लाइंट है इसने इतनी बेताचा बोइंग को वार्निंग्स दी थी और बोइंग ने सुनी नहीं थी, तो अब जो है हम बोइंग को इसके लिए सू कर रहे हैं। बोइंग जो है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए था लोगों का सेफ्टी, बजाय इसके कि मार्केट का जो सप्लाई था उसको फटाफट उनको तैयारी देने के बजाय जो था इसके कारण, इसीलिए ये जो है पिछले दिनों में इतने भी इनके जो है एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और वो हुए। अब ये जो है फेडरल गवर्नमेंट में आज काफी इसके ऊपर डिस्कशन रही कि बोइंग जैसी कंपनी सेफ्टी जो टूल्स है या इंजीनियरिंग फ्लॉज जो है उनको कैसे ओवरलुक कर सकती है भाई। तो ये अब जो है ये अब इसका स्यापा लंबा ही चलेगा बोइंग के साथ जो है, क्योंकि वो कहता है जी मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि ही वॉज की इंजीनियर देयर, वो कहते हैं मेरे पास एक एक चीज है और मैं इनको बताता जा रहा था कि आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। अलजजीरा की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक यूएस जो है उसने कहा है जी कि हम थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट और इन्फेंट्री वेपन्स जो हैं वो हम यूक्रेन को दे रहे हैं, जो हमने खींचे थे, जो हमने यानी कि स्नैच किए थे, एक शिप जो जा रहा था ईरान से हूथीज के लिए यमन में, और उन्होंने आज उसकी पूरी की पूरी तस्वीरें वहां पर जो है यूएस मिलिटरी ने छापी हैं। तो यूएस मिलिटरी जो है वो कहता है जी कि ये ट्रांसफर जो है ये हमने अब किया है अप्रैल 4 को, और उसकी डिटेल्स आज इन्होंने दी हैं। आपको पता ही है कि बाइडेन साहब ने अभी कहा था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और जो है यूक्रेन को हेल्प करेगी, लेकिन बाइडेन साहब जो अपना लेकर ये आ रहे थे 60 बिलियन US डॉलर का नया ये जो बिल आ रहे थे, और उसमें कह रहे थे कि अंडर दैट यूएस वेपनरी जो है इनको देनी चाहिए, उसको स्टॉप कर दिया था उस वक्त रिपब्लिकन हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने। उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल आपको इसकी इजाजत नहीं अब और देंगे। एक्स के ऊपर यूएस सेंट्रल कमांड, जिसको कि सेंटकॉम भी कहते हैं, उन्होंने आज कहा कि हमने 5,000 AK-47 असॉल्ट राइफल्स, मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स, 500,000 राउंड्स ऑफ 7.62 एमुनिशन जो कि हमने लिए थे, चार ये जो स्टेटलेस वेसल्स जा रहे थे जिसको कि यूएस नेवल शिप्स ने इंटरसेप्ट किया था, और बेसिकली ये ईरान के थे जो एलएचडी ह्यूथी फोर्सेस को दिए जा रहे थे बिटवीन May 22, 2021 से February 15, 2023 के बीच में। ये सारे का सारा सामान जो है अब उनको दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के अंदर बात करते हुए ईरान ने कहा जी कि हम, जब उनसे पूछा गया कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा सामान हमको बिलोंग ही नहीं करता है, तो हम इस पे क्या कमेंट करेंगे, ये उन्होंने पता नहीं कहां से पकड़ा है और हमको जो इसका ब्लेम दे रहे हैं, तो हम इसको नहीं करेंगे। आज की जो मेजर खबर, आज आपने एक्स के ऊपर अगर ट्रेंड देखा होगा तो आपको नजर आ रहा होगा बाइडेन साहब ने मोर और लेस सहमति जता दी है कि शायद वो जूलियन असांज का जो केस है उसको अब परस्यू नहीं करेंगे। आपको पता ही है कि 2019 से जूलियन असांज जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है यूके के अंदर रह रहे हैं, और बिल्कुल 7 साल तो इन्होंने इक्वाडोरियन एम्बेसी के अंदर जो है वो गुजारी है, जिसके के बाद इनको बेलमार्श प्रिजन इन जो ब्रिटेन है उसमें शिफ्ट किया गया था, क्योंकि इक्वाडोर ने कहा था कि हम इनको जो है शरण देंगे, यानी कि हम इनको जो है प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन उसके बाद से ये अब जेल में है। ऑस्ट्रेलिया के जो है प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज, उन्होंने इनसे बात की थी बाइडेन साहब से, और उन्होंने कहा था जी कि इस आदमी ने इनफ प्राइस पे कर दिया है, इनफ इज इनफ, और कॉन्स्टेंटली ये जेल के अंदर रह रहा है, और जो कनेडियन जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है इस चीज को अब बड़ा उससे देख रही है कि भई आप इसकी जान आप छोड़ दें, इसने काफी जो है वो आपके जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए थे जिसके के ऊपर आपने इसको कहा था कि यूके से इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए और यहां पे लाया जाए ऑन एस्पनाइज चार्जेस, तो काफी सजा इसने काट लिया। प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने कहा जी कि हमने अब एक बात जो है वो इनके साथ शुरू की है, और बाइडेन साहब जो थे आज मुलाकात कर रहे थे जो आए हुए हैं यहां पे, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे, जब जर्नलिस्ट ने इनके साथ ये क्वेश्चन किया और इन्होंने कहा जी कि आप बताएं इसका जवाब आप क्या देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हां मैं सोच रहा हूं कि ये जो विकीलीक्स का फाउंडर है जूलियन असांज, इसको हम ज्यादा पुश ना करें प्रोसिक्यूशन के लिए और इसको एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए यहां पे, तो अब पता नहीं अब ऑस्ट्रेलिया ये वापस जा सकेगा यूके से नहीं या नहीं।
इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया।
नहीं, ऑस्ट्रेलियन है ये सिटीजन, तो इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, उन्होंने कहा है कि भई ये हमारे पास जो है ये आ सकता है। तो ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमी किशिडा से जो है मुलाकातें आज कर रहे थे बाइडेन साहब, तो ये फिर इन्होंने कहा जी कि वो है, तो ऐसे
तो इस लास्ट डेज एनीवे,
हाँ लास्ट डेज है, कितना तो ये बीमार है और कितनी ये जो है इसको वो है, तो वो है जी, तो इस तरह से। रॉयटर्स जो है जी उसकी आज ये खबर है, और उसके मुताबिक जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिपिंग हैं उनकी आज मुलाकातें जो हैं हुई हैं फॉर्मर ताइवानीज प्रेसिडेंट मा यिंग जियोन से, और इसको आज वेस्ट ने बहुत ही बुरे तरीके से देखा है, और बुरे तरीके से इसलिए देखा, आपको पता ही है कि ताइवान जो था उसने अपने आप को कट ऑफ कर लिया था मेनलैंड चाइना से, और अपनी खुद की गवर्नमेंट जो थी वो डिक्लेयर कर दी थी 1949 में, जब इनकी जो नेशनल फोर्सेस थी दे लॉस्ट अगेंस्ट चाइनीज सिविल वॉर टू माओ ज़ेडोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और वो ये जो थे इन्होंने कहा था कि अब हम एक जो है सेल्फ रूल्ड आइलैंड के तौर पे रहेंगे। चाइना जो है जाहिर है कि इस बात को बिल्कुल नहीं मानता है, वो कहता है जी कि ये इट इज पार्ट ऑफ द फैमिली और इसको यूनियन जो है करनी पड़ेगी बीजिंग के साथ। ये जो है ये बड़े प्रो चाइनीज हैं जो ये ताइवान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं मा यिंग, और आज जब इनकी मुलाकातें हुई हैं तो वेस्ट में इसको बहुत बुरे तरीके से देखा गया है कि भाई ताइवान के ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ये क्यों जा के मिल रहे हैं जबकि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। खासतौर पर आपको पता है वेस्ट के साथ साथ यूएस जो है बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ताइवान हैज बिकम अ इकोनॉमिक पावर हाउस। उसकी वजह यह है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर्स है ये,
चिप्स,
तो चिप्स बनाता है, तो सेमीकंडक्टर्स तो आपकी आपको पता ही है कि हर चीज में यूज होती है। तो इसलिए अमेरिका चाहता नहीं है कि ये चाइना का हिस्सा बने, वो चाहते हैं कि ये इसी तरह सेपरेटली ऑपरेट करते रहें। तो ये अब जो इनकी मुलाकातें हुई हैं और इनके बीच में जो डायलॉग हुआ है उसमें जाहिर है कि ताइवानीज ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा जी कि हम चाइना का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन इस वक्त के जो चाइना को रूल कर रहे हैं जो पार्टी है वहां पे वो बिल्कुल चाइना के साथ अपना वो नहीं बनना चाहती, हिस्सा नहीं जो है वो डालना चाहती है। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चाइना चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। इसके अंदर जो है 32 रूम्स हैं जिसके अंदर आप अपने इवेंट्स कर सकते हैं, 1400 लोगों को बुला सकते हैं। मुझे और माजिद भाई को भी अगर बुलाना चाहें तो आप बिल्कुल दावत पे बुला सकते हैं। और ये जो है लोकेटेड है 2935 ड्रू रोड मिसिसागा में और इनका नंबर है 6479653823। इसके अलावा जनाब जो विलेज टेस्ट है ओंटारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे, ये वैसल जटा साहब होते हैं, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, एक 4141 डिक्सी रोड में मिसिसागा में है, इसका नंबर है 9052323663 और दूसरा जो है ओकविल में है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट के ऊपर और उसमें आप ऑर्डर डाल सकते हैं इनको 9052262294 के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जनाब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ईद के मौके पे जो बहुत सारे जो हैं वो फोन कॉल्स किए हैं, एक उन्होंने फोन कॉल जो सबसे पहला किया कुवैत के काउंटर पार्ट जो हैं शेख मोहम्मद सबा अल सालिम अल सबा जो है उनसे किया और ये इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने और ट्रेड के ऊपर बात किया। इसके अलावा इन्होंने जो ईद की ग्रीटिंग्स दी हैं लीडर्स ऑफ कतर टर्की यूएई और मलेशिया को भी दी हैं। कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी उनके साथ बात की और कहा जी कि हमको टाइज और बढ़ाने की जरूरत है और उन्होंने फिर इनको इन्वाइट भी किया है पाकिस्तान में कि आप जरूर आए। इसके अलावा इन्होंने टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान को भी किया और उन्होंने कहा जी कि हमारे तो हिस्टोरिकल टाइज हैं, हम इसको और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान उनको भी उन्होंने कहा जी कि वी हैव क्लोज फ्रटर्नल टाइज। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवर इब्राहिम उनके साथ भी इन्होंने कहा और इन्होंने कहा जी कि हमको अपना बायोलैटरल कोऑपरेशन जो है इन ऑल सेक्टर्स बढ़ाने की जरूरत है। तो ये इनकी ईद के ऊपर बातचीत हुई है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि एक एजुकेशन इमरजेंसी हम पाकिस्तान के अंदर अनाउंस करने लगे हैं। आज इनकी मुलाकातें जो हैं पुअर किड्स जो हैं उनके साथ जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ इनकी मुलाकातें हो रही थी, उन गरीब बच्चों को उन्होंने बिल्कुल ये आज दिया है ये प्रॉमिस दिया है। उन्होंने कहा जी कि अगर ये जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे कि एचएसएन कॉलेज और ग्रामर स्कूल जो है लाहौर का या इस्लामाबाद का उसके दरवाजे अगर आपके ऊपर बंद हैं तो हम दानिश स्कूल खोलेंगे आजाद जम्मू और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान और सिंध के अंदर ताकि अकॉर्डिंग टू जिना साहब एस्पिरेशंस के इस कौम को पढ़ाई की और तालीम की जरूरत है हम आपको अच्छी तालीम देंगे और अगर कोई बच्चा गरीब फैमिली में पैदा होता है तो ये उसका कसूर नहीं है और हम जो है चाहते हैं कि हर बच्चे के पास एजुकेशन होए। ये आज जो दानिश एक स्कूल है कुरी के एरिया में इस्लामाबाद के पास वहां पे एक 30 एकड़ के ऊपर एक नया स्कूल बनाने जा रहे थे उसकी इनॉग्रेशन पे ये थे जब इनकी मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने कहा जी ये तमाम के तमाम दानिश स्कूल फ्री एजुकेशन देंगे और अकोमोडेशन जो है गरीब बच्चों की उसका भी ख्याल करेंगे इस्लामाबाद और उसके सबब में पहले हम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे इलाकों में भी लेके जाएंगे। इस स्कूल की जो ये जो कुरी में बन रहा है इसकी इसके ऊपर कॉस्ट आएगी 5 बिलियन रूपीज और जो है इसके अंदर ये सारी सुविधाएं यानी कि सहूलतें दी जाएंगी। आपको पता ही है कि एक जो डाटा आया था रिसेंटली उसके मुताबिक पाकिस्तान में 26 मिलियन किड्स आर आउट ऑफ स्कूल्स और ये बिल्कुल ही बहुत ही जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो ये उसके ऊपर जनाब बात होगी। पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी जो बेटी हैं शहर बानो कुरैशी उन्होंने आज कहा है जी बड़ी उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा जी कि ये जो 6 इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ब्रेव जजेस थे जिन्होंने के लेटर लिखा था ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जुडिशियल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करती हैं तो मेरे वालिद साहब का उससे मुराल बड़ा हाई हुआ है और आज ये बात कर रही थी मीडिया के साथ अडियाला जेल के बाहर। उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो अच्छी हेल्थ में हैं और होपफुल हैं और वो समझते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर जस्टिस होएगी। इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं वो भी बड़ा بالکل ٹھیک ہیں اور وہ اور میرے والد صاحب ایک اسٹرانگ اسٹیبل پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ سائفر کیس کے اندر اب جو ہیئرنگ ہے وہ اپریل 16 کو ہوئے گی اور پروسیکیوشن جو ہے اس کے پاس اب کوئی بھی ایکسکیوزز باقی نہیں بچ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی کانکریٹ اور آرگیومنٹس ہیں نہیں اس کیس کے اندر. آپ کو پتا ہی ہے کہ جنوری کے اندر اسپیشل کورٹ جج جو ہے عبد الحسنات ذوالقرنین انہوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید جو تھی وہ سائفر کیس میں سنائی تھی. تو اسی سلسلے میں ان کی بیٹی جو ہیں وہ بات کر رہی تھی کہ وہ آج ان سے ملاقات کرنے کے لیے یا کل شاید گئی تھی ان سے عید پہ ملنے کے لیے. سندھ کے جو سینئر منسٹر ہیں شرجیل میمن صاحب انہوں نے آج کہا ہے جی کراچی کے اندر کہ یہ جو اللیگل ریزیڈنٹس کراچی میں رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ بڑھ گیا ہے. تقریباً 6780 کرمنل کیسز کراچی میں ہوئے ہیں صرف ایک جو ہے رمضان کے مہینے میں, جس میں کہ 20 ویکلز جو ہیں وہ لوگوں سے چھینے گئے ہیں, 130 چوری کیے ہیں, 830 موٹر سائیکلیں چھینی ہیں, 4200 موٹر سائیکلیں چوری کی گئی ہیں. آج یہ جرنلسٹوں کے ساتھ بات کر رہے تھے اور حیدرآباد سندھ کے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کرائمز کو کنٹرول کیا جائے. یہ جو سنیچنگز اور یہ جو چل رہی تھی اس کے اندر تقریباً 100 کے قریب لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس بھی جو ہیں انہوں نے بھی ایک ڈیٹا دیتے ہوئے کہا تھا کہ 300,000 سے 400,000 پروفیشنل بیگرز جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں کراچی کے اندر انٹر ہوئے تھے. سندھ کے گورنر کامران ٹسوری نے بھی رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو کرائمز ہیں یہ اکنامک پراسپیرٹی میں سب سے بڑا ہنڈرنس ہیں. ایس آئی ایف سی کی جو اور انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ جو ایس آئی ایف سی ہے جو سول ملٹری باڈی ہے اس کو یہاں پہ آ کے کراچی میں آپریٹ کرنا چاہیے اور یہ سارے جو کرائمز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. شرجیل میڈم نے البتہ کہا جی کہ ہم ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن بٹھائے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے کرائمز کو کانسٹنٹلی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا اس سے بالکل ہی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ سندھ کی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کی پی 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 کی گورنمنٹ جو ہے اس نے پچھلے 10 سال میں کچھ نہیں کیا تو اب جو ہے وہ کیا تیر مارنے والے ہیں. عید کے دن جناب اڈیالہ جیل کے باہر کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز جو تھے وہ کچھ پروٹیسٹ کر رہے تھے, بالکل پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, صرف پلیک کارڈز لے کے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو چھوڑو, کیونکہ اس سے پہلے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید عید کے موقع پہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا اس کے پہلے دن میں ہی, لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ نہیں چھوڑا گیا تو یہ باہر اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوئے جو ہیں وہ کر رہے تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے. پولیس جو تھی ان سارے لوگوں کو پکڑ کر لے گئی تھی پھر اور انہوں نے ان کو جو اڈیالہ جیل کا جو پولیس اسٹیشن ہے راولپنڈی میں ادھر لے کر چلے گئے تھے اور پھر ان کو عید والے دن جی کافی گھنٹے بٹھایا, یعنی کہ لوگوں کی عید خراب کی صرف اس چیز کے لیے کہ جی انہوں نے کہا جی ہمارے لیڈر کو باہر نکالو اور پھر اس کے بعد انہوں نے جی کچھ دیر کے بعد ان کو چھوڑ دیا اور جو ہے وہ جانے دیا. لیکن پولیس سے جب پوچھا گیا, میڈیا نے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا, لوگوں کی عید کیوں خراب کی, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ارریلیونٹ لوگ تھے اور ارریلیونٹ لوگوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے کھڑے ہوں, کیونکہ ہم نے سیکیورٹی بڑی ہائی الرٹ پہ کی ہوئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب یہاں پہ جیلڈ ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم ان کو ہٹانا تھا اور ہم ان کو پکڑ کے لے کے گئے تھے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے جی اس کی آج ایک رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر جو کانسٹنٹ پولیٹیکل انریسٹ چل رہا ہے, ڈیوسٹیٹنگ فلڈز آئے تھے اور گورنمنٹ کا جو فیلئر ہے پچھلے 18-19 منتھس میں کہ انہوں نے کی پالیسیز کے اوپر کچھ بھی کام نہیں کیا, وہ پاکستان کی پروگرس کو اصل میں روکے ہوئے ہیں. انہوں نے آج اپنی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک آؤٹ لک رپورٹ 2024 دی ہے, اس میں انہوں نے کہا جی کہ بے تحاشا ملک کے اندر انسرٹینٹی ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی یہاں پہ ریفارمز نہیں لائے گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ 2023 کے اندر جو جی ڈی پی کا ڈکلائن تھا 0.2% سے آیا تھا, جبکہ اس سے پہلے 2021-22 کا جو فسکل ایئر تھا اس کے اندر 6.2% سے پاکستان کی جو ہے وہ گروتھ چل رہی تھی, جی ڈی پی جو تھا 6.2% پہ چل رہا تھا. لیکن اب جو ہے کچھ بہتری آ رہی ہے کیونکہ امپورٹس انہوں نے بے تحاشا بڑھا دی تھی, امپورٹس کے اوپر کچھ انہوں نے روک لگائی ہے اور ایکسپورٹس کو تھوڑا بڑھانے کی کوشش کی ہے, تو انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان کی گروتھ شاید اس سال میں 1.9% پہ چلے گی. واہ جی واہ, کیا بات ہے, کیا ترقی کی ہے پاکستان میں, واہ جی واہ, سلام ہے میرا جناب پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ کو بھی کہ 6.2 پہ گروتھ کر رہا تھا پاکستان. اب مبارک ہو آپ کو, بہت بہت آپ نے بہت بڑا تیر مارا ہے, سٹیل کیا ہے الیکشن بھی اور 1.9% پہ آپ گرو بھی کریں گے, ویری گڈ ویری نائس, تو بہت بڑا کام کیا آپ نے پاکستان کے لیے, بڑی محبت دکھائی ہے آپ نے, کیا بات ہے. کے پی کے اندر جو टेररिज्म है उसको कम्प्लीटली बैटल किया जाएगा। आज केपी के आईजीपी अख्तर हयात खान साहब जो हैं इसके ऊपर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिस्ट टैन की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन हमने 88 टेररिस्ट जो हैं वो मार गिराए हैं डिफरेंट एंटी टेरर ऑपरेशंस में सिंस जनवरी 1st 2022, और यहां पे काफी हाई वैल्यू टारगेट्स जो थे वो भी थे यहां पे जो कि किलिंग्स में और उसके अंदर जो थे वो शामिल थे। आज आईजीपी साहब जो हैं वो खुद कुछ इलाकों का चक्कर लगा रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हम कॉन्स्टेंटली लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और डेरा इस्माइल खान में तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है थोड़ा इम्प्रूव भी हुआ है। फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज किए गए थे उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर भी हम जो है कॉन्स्टेंटली मिलिटेंट्स जो हैं उनको परस्यू कर रहे हैं थ्रू इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि 41 पुलिसमैन जो हैं अभी तक इस साल में उनकी डेथ्स हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम फाइट करेंगे टेररिज्म के अगेंस्ट, और फॉरेनर्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी हम इम्प्रूव करेंगे। केपीओ बलूचिस्तान के अंदर पिछले कुछ महीनों से आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा हमसे कि बेतहाशा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, और तकरीबन 92% ऑफ ऑल फैटलिटीज एंड 86% अटैक्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जो 2024 था वो केपीओ बलूचिस्तान के अंदर देखा गया था। तो इसकी जो सारी जो डिटेल्स थी वो जो फर्स्ट क्वार्टर 2024 की सिक्योरिटी रिपोर्ट आई थी जिसको कि रिलीज किया था सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने, उसका भी जिक्र किया था। तो आज ये आईजीपी साहब जो हैं केपी में ये कह रहे थे कि अब हम और ज्यादा जो है रहेंगे सावधान, यानी कि हम और ज्यादा विजिलेंट रहेंगे और ये चीजों को देखेंगे। हिंदुस्तान जो है वो मुझे लगता है पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन पाकिस्तान में हुए थे ना वैसा वैसा ही अब हिंदुस्तान के अंदर भी लोग फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी के आज जो लीडर हैं उनके एक एमपी ने मध्य प्रदेश में उनके एक लीडर ने बीजेपी के लीडर ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा तूफान उठा लिया है जो उन्होंने वहां पे रेवलेशंस किए हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे खास तौर पे आरएसएस के बंदों ने कांग्रेस में भेजा था अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेटजी ताकि कांग्रेस को हराया जाए। रामकिशोर शुक्ला जिनको के भैया जी भी कहते हैं वो कहते हैं कि जी मैंने मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन थे जानबूझ के मैंने मध्य प्रदेश बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया था, क्योंकि हमने एक अब साजिश ही अब इसको कह सकते हैं हमने एक साजिश बनाई थी, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि कांग्रेस को यहां से जुड़ने नहीं देना है, और बीजेपी की जो यहां से कैंडिडेट थी उषा बाबू सिंह ठाकुर वो जो थी वो ज्यादा उषा बाबू सिंह ठाकुर वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो हम ये चाहते थे कि हम जो है खराब किस्म के यहां से लीडर्स लाएं ताकि वो जीत सकें। और उन्होंने कहा जी कि ये जो थे जब मीडिया ने पूछा कि आपको ये सलाह किसने दी तो उन्होंने आरएसएस के बड़े लीडर्स के नाम लिए। उन्होंने कहा जी कि मुझे अभिषेक उदनिया ने और जो है इंदौर विभाग संगठन मंत्री जो है उन्होंने मुझे कहा था कि भई आप जो है जाके ये करो, क्योंकि उसके फौरन बाद जो है ये जैसे ही हारे थे फिर से ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के अंदर आ गए। अब इसके ऊपर जो है जाहिर है कि बीजेपी को तो एम्बेरसमेंट जो हुई है। उषा साहिबा जो है उन्होंने इसको रबिश किया है, उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठे और बेसलेस जो है इनके एलिगेशन है मेरे ऊपर, ये जब पार्टी को छोड़ रहे थे तो ये मेरे से मिलने आए थे तो बड़े सैड थे कि मुझे क्यों नहीं टिकट दिया गया और रो रहे थे और इसीलिए ये छोड़ के गए थे, और अब जबकि ये हार गए और वापस बीजेपी में आए तो अब ये स्टोरीज बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पायन व्हाट इज दिस
ठीक है जी
व्हाट इज दिस गोइंग ऑन ठीक है जी। और जनाब मोदी जी ने आज फिर से कह दिया हम अंडर मोदी जो है तो ही इंडिया इतनी हिम्मत कर सकता है कि हम घुस के किसी को मारें। अच्छा जी आपको मैंने बताया था थोड़े दिन पहले कि ये जो रिपोर्ट आई थी गार्डियन की कि 20 लोगों को पाकिस्तान के अंदर आके रॉ के एजेंट्स ने मारा था, जिसमें कि हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसने कहा था कि बिल्कुल ये हमारा लक्ष्य नहीं है, यानी ये हमारा स्टाइल नहीं है, ये हमारा तरीकाकार नहीं है, हम दूसरे मुल्कों के अंदर जाके लोगों को नहीं मारते हैं। पायान क्या कह रहे हो आप, अमरीका भी यही कह रहा है, कनेडा भी यही कह रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में भी यही कह रही है, आप कह रहे हो हम ऐसा करते नहीं है। अच्छा जी बहरहाल तो मोदी जी ने आज फिर से आपको बताइए हमने आपको बताया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा है, आज मोदी जी ने भी कह दिया कि सिर्फ ये जरूरत जो है ये अंडर मोदी इंडिया कर सकता है कि हम आतंकवादियों को घर में घुस के मारते हैं। आज ये एक रैली कर रहे थे उत्तराखंड के ऋषिकेश के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है कि अब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके लिए 2019 में आपको पता ही है कि ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था मोदी जी को, जब इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तान के अंदर, और ये इसका जो पुलवामा अटैक में अलेजली इन्होंने कहा था पाकिस्तान का रोल है, उसका बदला लेने के लिए ये किया था, लेकिन आपको पता ही है कि फिर उसके बाद क्या हुआ था। अभिनंदन साहब को बड़ी प्यारी चाय पिलाई गई थी। तो बहरहाल जी, तो वो कहते हैं जी कि कांग्रेस जो है वो अपने सोल्जर्स को प्रोटेक्ट नहीं करता था, सिर्फ मोदी यानी मेरी गवर्नमेंट ने, हमने जो है इनको प्रोटेक्टिव गियर दिया है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए हैं, और अब जो है एनिमी जो है हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके अलावा ये तमाम की तमाम चीजें जो बन रही हैं, ये जो इसमें डिफेंस सर्विसेज में, ये सारी मेड इन इंडिया हैं, सो थैंक्स टू मोदी एंड बीजेपी। उन्होंने खुद अपनी तारीफें करते हुए ये कहा मोदी जी ने, और उन्होंने कहा ये तमाम मॉडर्न राइफल्स और फाइटर प्लेन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स ये अब हम डोमेस्टिकली बना रहे हैं, और बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम मुल्क के अंदर ला रहे हैं। अच्छा, ये उत्तराखंड में इन्होंने बातें इसलिए की हैं कि उत्तराखंड जो है हिंदुस्तान की उन टॉप 5 स्टेट्स में से है जिसमें से लोग ज्यादा से ज्यादा इंडियन मिलिट्री को जाके ज्वाइन करते हैं, और यहां से इनकी दो मेन रेजिमेंट्स भी हैं, एक है गढ़वाल राइफल्स और एक है कूमो राइफल्स। तो उनको खुश करने के लिए लग रहा है कि मोदी जी ये बातें कर रहे थे, और आज फिर से वो मान गए कि जी हमने घुस के मारा, यानी कि हमने दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी के खिलाफ वर्जी की, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की, घुस के मारा, और मतलब है हम डरते भी नहीं हैं। तो है जी बहन, खुश हो, ठीक है। आज जो हिंदुस्तान की एक बड़ी खबर और रही जिसने के काफी जिसकी वजह से लोग चौंके, सरबजीत सिंह 45 ईयर्स इनकी एज है, और ये बेटे हैं इंदिरा गांधी के जो दो थे बॉडीगार्ड्स।